नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और आज रात्रिकालीन संस्करण में मैं आपके समक्ष अकेला ही प्रस्तुत रहूंगा, क्योंकि कुछ इमरजेंसी के कारण ओंकार जी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं स्थिति पर बहुत ही निकट दृष्टि रखे हुए हूं, क्योंकि मैं इस समय जयपुर में ही बैठा हुआ हूं और जयपुर में लगातार मेरी बातचीत हो रही है लोगों से। और जो स्थिति कल थी, जिसमें हमें ये लग रहा था कि अशोक गहलोत ने बाजी मार ली, अशोक गहलोत की बगावत ने धता बता दी और अशोक गहलोत जो है अब चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, उनको प्रेसिडेंट पद में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आज जो है स्थिति ने तेजी से करवट ली है राजस्थान की राजनीति में, और उस तेजी से करवट लेने के बाद स्थिति यह हो गई है कि जो जो लोग कल वहां पर परसों जो उपस्थित थे, शांति धारीवाल जी के यहाँ, आपको पता है कि क्या हुआ था। पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है अब आ चुका है बाहर, और बाहर ये इस प्रकार से है क्योंकि बाद में एक इंटरव्यू भी दे दिया था अजय माकन ने, और उन्होंने कहा था कि भई हम तो सारे विधायकों से एक एक करके मिलना चाहते थे, लेकिन फिर हमारे सामने जो है वो प्रतिनिधि के रूप में तीन लोग आ गए, जिसमें से दो मंत्री थे, तीनों मंत्री थे और बड़े मंत्री थे, शांति धारीवाल जो कि मनी बैग हैं, और उसके बाद महेश जोशी, वो PhD का भी, उनके पास भी प्रभार बहुत बड़ा है, जल संसाधन है उनके पास। फिर उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो इस सरकार के मनी बैग माने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि वे मनी बैग हैं, आश्चर्य की बात यह है कि प्रियंका गांधी के निकटस्थ प्रमोद कृष्णम जी ने कल यह बात खुले तौर पर टाइम्स नाउ चैनल पर नाविका कुमार को कही है, और उन्होंने कहा है कि कुछ मंत्रियों के दिमाग खराब हो गए हैं, क्योंकि कुछ मंत्रियों को 3-3, 4-4 हजार करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए हैं, और उसके कारण उनको ये लग रहा है कि अब उनको कोई टच नहीं कर सकता, अशोक गहलोत का हाथ है उनके ऊपर, इसलिए अब वो हाई कमांड के साथ में पंगा ले सकते। ये प्रमोद कृष्णम ने कल बात कही है स्पष्ट रूप से। और उसके बाद फिर बहुत सारे जो विधायक थे वहां पर जो उपस्थित थे, उनमें से कई लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। बाहर आने का मतलब यह है कि पहले यह बताया गया कि 92 लोगों ने हस्ताक्षर किए, 92 के बाद फिर जो संख्या है वो घट के आ गई 82। अब किसी से भी आप पूछिए, आज जैसे मैं देख रहा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास से पत्रकार प्रश्न कर रहे थे कि भाई आप बताइए संख्या कितनी थी, आगे हमारे जो संवाददाता हैं वो तो कह रहे हैं 42 थी संख्या, तो वो उछल पड़े, नहीं 42 कैसे हो सकती है, लेकिन सही संख्या नहीं बता रहे। होता क्या है कि ऐसी स्थितियों में मैंने भी कई बार देखा है, और मैंने भी कई इस प्रकार के चुनाव लड़े हैं, जैसे मैंने, और इतने बड़े चुनाव तो नहीं, यानी कि प्रधान मुख्यमंत्री वाला चुनाव तो नहीं, तो लेकिन निश्चित रूप से मैंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कई चुनाव लड़े हैं, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी जो दंद फंद होते हैं वो इस चुनाव से कम नहीं होते। तो अधिकतर लोग जो हैं वो, उनके सामने जब इस प्रकार की स्थिति आती है और वे पूरी तरह से अपने नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, कमिटेड होते हैं, तो होता क्या है कि उनके सामने जो भी कहा जाता है इस पे साइन कर दो, कई बार तो लोग जो हैं वो ब्लैंक पेपर पर भी साइन कर देते हैं, तो उनके सामने ब्लैंक पेपर रखा जाता है और साइन कर देते हैं, ये मैंने कई बार देखा है, क्योंकि उनको ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए हमने पूछा कि भाई क्यों साइन करवा रहे हो, तो ऊपर वाले नाराज नहीं हो जाएं, ये एक बड़ा फैक्टर रहता है लोगों को, और लोग जो है वो उन्हीं की कृपा पर सोचते हैं कि भाई ये कृपा करेंगे। दूसरा फैक्टर ये था कि अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो जब अगला टिकट जब बांटा जाएगा, जब टिकट चुनाव के लिए जारी होंगे, तो उसमें उनकी प्रमुख भूमिका रहेगी, तो उनको तो क्यों नाराज किया जाए। तो ये अगर देखिए कि इस प्रकार का यदि हाईकमान को चेंज करना भी था, तो यदि वो अशोक गहलोत को अध्यक्ष ना बना रहे होते तो संभवतः उनके लिए आसान हो जाता, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत के लिए ये निश्चितता कि भाई ये अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो हाईकमान की भी राह जो है वो कठिन हो गई। और जो तीन उनके सामने प्रस्ताव रखे गए, यानी कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ये जो तीन मंत्री गए थे, उन्होंने तीन प्रस्ताव जो रखे, वो तीन प्रस्ताव बड़े विचित्र थे। एक तो ये कि साहब कि आप पहले यहाँ रेजोल्यूशन में ये लिखिए, कंडीशनल रेजोल्यूशन लीजिए कि हम सारे जो अपने अधिकार हैं वो हम सोनिया गांधी जी को समर्पित करते हैं, अध्यक्ष कांग्रेस, कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्षा को देते हैं। लेकिन उसमें ये है कि ये जो का परिणाम है वो 19 अक्टूबर के बाद घोषित किया जाएगा, यानी 19 अक्टूबर तब जब नया अध्यक्ष शपथ ले लेगा उसके बाद घोषित किया जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि यह भी घोषित किया जाए कि जो 102 लोग बाड़े में बंद थे अशोक गहलोत जी के साथ, जब अशोक गहलोत वर्सेस सचिन गहलोत वाला, सचिन पायलट वाला घमासान चल रहा था, जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो इन्हीं 102 में से बनाया जाएगा, वो बात हो गई। तीसरी बात कि जो भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो अशोक गहलोत जी से सलाह करके बनाया जाएगा। अब आप ये बताइए कि कोई भी हाई कमांड नेशनल पार्टी की, क्षेत्रीय पार्टियों को तो बात छोड़ दीजिए, उसमें तो एक ही का कमांड होती है और उसमें किसी की कोई औकात नहीं होती कि उससे कोई बात कर सके, लेकिन नेशनल पार्टीज की भी जो हाई कमांड होती है उससे इस स्वर में कोई बात करे तो आप ये सोचिए कि उस हाई कमांड की क्या इज्जत रहेगी। अब उस हाई कमांड के सामने इन्होंने दो ही ऑप्शन छोड़े थे कि या तो वो एक्शन लें और अशोक गहलोत को आउट करें और उसके बाद अशोक गहलोत के विरुद्ध एक्शन लें, अशोक गहलोत के जो विधायक हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। तो अब ये स्टेज हो गई है सेट, और स्टेज सेट होने के बाद ये बात कर दी गई है लीक। जब बात कर दी गई है लीक तो आप समझ सकते हैं फिर क्या हो रहा है, फिर हमारे जितने भी विधायक हैं वो सब इधर उधर भागते घूम रहे हैं। कुछ जो डाई हार्ड हैं, जिनको प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि साहब कि इन्होंने तो करोड़ों रुपए बनाए हैं, आज तो मैंने देखा एक चैनल पे आज तक पे कि दो मंत्री, एक प्रताप सिंह खाचरियावास जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, और एक राजेंद्र सिंह गुड़ा जो स्टेट मिनिस्टर हैं पंचायती राज के, उनमें दोनों में आपस में जब बारी आई और उनको दोनों को आमने सामने किया गया तो प्रताप सिंह खाचरियावास छोड़ के निकल लिए, उनका मैं इनसे सामने बात नहीं करूंगा, और दोनों जो हैं वो स्पष्ट रूप से एक दूसरे के विरोध में बात कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास संख्या बल की बात कर रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास वो हैं जो सचिन पायलट के कोटे से मंत्रिमंडल में आए थे, टिकट उनको सचिन पायलट ने दिलवाया था सिविल लाइंस जयपुर का, वरना उनका टिकट में नाम नहीं आ रहा था, तो उन्होंने पैर पकड़े थे सचिन पायलट के, सचिन पायलट ने उनको सिविल लाइंस का टिकट दिलवाया था। आज वो ये कह रहे हैं कि साहब के सचिन पायलट को किसी भी हालत में मंत्री नहीं बनाया जाए। दूसरी बात है जो राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कही, वो भी वही वाली बात है कि जो आप कह रहे हैं कि जो लोग बाहर बैठे हुए थे 19 या 20 या 24 और जो भी सचिन पायलट के साथ बीते बैठे हुए थे, उनमें से तो समझौता होने के बाद में 5 जो हैं इस समय मंत्रिमंडल में भी हैं। तो अब जो ये 102 और 19 का जो भाग है या जो विवाद है या जो विभाजन है वो तो अब रह नहीं गया, तो फिर आगे क्या होना चाहिए। अब इस पूरे स्थिति के आकलन से एक तो ये लग रहा है कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने कल जब रिपोर्ट उनको दी गई जाके, और उन्होंने जिस प्रकार से ये कहा कि लिखित में रिपोर्ट दी जाए, वो बड़ी विचित्र स्थिति बताती है, क्योंकि ऐसा दिखाता है कि संभवतः नेतृत्व काफी निर्बल है, दुर्बल है, क्योंकि यदि सशक्त नेतृत्व होता है तो ऐसी स्थितियों में कम से कम जिन लोगों ने यह विद्रोह रचा था, इसकी जो व्यूह रचना की थी, जो तीन लोग मिलने गए थे, इन तीनों को तो निश्चित रूप से तुरंत ही निलंबित कर देती हाईकमांड, और कांग्रेस पार्टी से यदि उनको बाहर निकाल देते तो फिर अशोक गहलोत के सामने कोई भी रास्ता नहीं रह जाता। आज के लिए अशोक गहलोत को ये बताया गया है, जैसे कि मेरी सूचना है कि अशोक गहलोत से बताया गया है कि आपके पास अब केवल दो विकल्प हैं, अध्यक्ष पद के बारे में आपके बारे में अभी भी सोचा जा सकता है यदि आप स्वयं त्याग पत्र दे दें मुख्यमंत्री के पद से। अब इस पर पूरी तरह से जद्दोजहद इस समय चल रही है। अशोक गहलोत को आप जानते हैं, अशोक गहलोत जो है वो पुराने पके हुए चावल हैं, वह अपने आप को समझते हैं कि उनसे अधिक जानकार और उनसे अधिक ज्ञानी कोई है नहीं दुनिया में राजनीति के क्षेत्र में, तो इसलिए वो पूरी तरह से अवज्ञा करने पर लगे हुए हैं। अभी देर रात तो कभी क्या समाचार आया अभी मुझे पता नहीं, अभी देर रात में क्या, क्योंकि अधिकतर जो है राजनीति में जो भी कार्य होते हैं वो देर रात में ही होते हैं, तो देर रात में जो कुछ भी चलेगा कार्यक्रम वो चलेगा, देर रात में जब कार्यक्रम चलता रहेगा तो ठीक है जैसा होगा वैसा निकलेगा सामने। लेकिन अब जो स्थिति मेरे हिसाब से बन रही है उसमें अशोक गहलोत के पास अब बहुत कुछ ऑप्शंस बचे नहीं, वो मुख्यमंत्री पद तो उनके पास नहीं रहेगा ये लगभग निश्चित हो गया है। वो या तो आज इस्तीफा दे दें या फिर वो महीने भर के बाद में निकाले जाएं। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव निकट आएंगे वैसे वैसे हाई कमांड का महत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि टिकट जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ही जारी होता है। विधानसभा कैंडिडेट बनने के लिए जो टिकट देती है पार्टी, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसके हस्ताक्षर से जारी होता है। तो ये निश्चित है कि जो भी विधायक बाहर जाएगा उसका टिकट कटेगा, एक चीज। दूसरी बात, इसलिए विधायकों में बहुत खलबली है इस समय, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आज ही यदि रायशुमारी करा ली जाए तो 30-40 से अधिक नहीं बचेंगे हमारे श्री श्री अशोक गहलोत जी के पास। इसलिए उचित तो ये रहता कि कांग्रेस अध्यक्षा जो थी वो डिक्लेयर कर देती कि भाई ये अगले चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और उसके बाद फिर रायशुमारी करा ले और आपको मिलेगा कि जितने भी इनके साथ बैठे हुए थे वो सारे के सारे आपको सचिन पायलट के खेमे में दिखेंगे। पॉलिटिक्स यही होती है। दूसरी तरफ आनंद किसको आ रहा है? आनंद आ रहा है भाजपा को, यानी भाजपा को तो बैठे बिठाए जिस तरह से एक तरह से लॉटरी खुल गई कि अब उनको जो है अधिक मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कल भी कहा था कि अब ये कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से हाथ में आ गया अमित शाह के, अमित शाह को वसुंधरा जी को साधने में समस्या तो आती ही आती, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा जी में और अशोक गहलोत में भी बड़ी अच्छी खिचड़ी पक रही थी बिल्कुल, यानी आप समझिए कि जितनी हमारी वसुंधरा जी की चल रही थी उतनी गहलोत सरकार के किसी मंत्री की भी नहीं चल रही थी। यदि वसुंधरा जी का फोन किसी ब्यूरोक्रेट के पास चला जाए तो उसकी मजाल नहीं कि उनकी बात को नकार दे, क्यों? क्योंकि यदि वो नकार दे तो बात सीधे मुख्यमंत्री तक जाएगी और फिर मुख्यमंत्री की डांट पड़ेगी, भाई आपने वसुंधरा जी की बात क्यों नहीं ठीक से सुनी, इतनी नजदीकियां। तो अमित शाह को वसुंधरा जी को टैकल करना था, अब वो ऑटोमेटिकली टैकल हो गई। अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, हालांकि अब वो इस समय आज की डेट में अभी बैठे हुए हैं वहां पर जाके और कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं अध्यक्ष का चुनाव अभी भी लड़ना चाहता हूं। उन्होंने फोन करके कह रहे हैं कि मैंने सोनिया जी से माफी भी मांग ली है और मैंने जो कुछ किया वो मैंने नहीं किया, ये लोगों ने अपने आप किया। हालांकि कोई भी इस बात को नहीं मान सकता कि लोगों ने अपने आप किया यह सारा का सारा, क्योंकि तीनों सिपह सलार जो थे वो इस समय खासुल खास थे, उनके कैंप इनके बिल्कुल ट्रबल शूटर्स तीन के तीनों। धारीवाल जी को तो सब जानते हैं, वो तो मनी बैग है ही, उनका काम ही है पैसे इकट्ठा करना और पैसे इकट्ठा करके 10 जनपद तक पहुंचाना, ये काम तो उनके पहले भी किया करते थे और अभी भी मनी बैग बने हुए। तो साथ में आपको पता है कि जो कोई आदमी आगे पहुंचाता है तो उसने थोड़ा बहुत तो अपने लिए रख लेता है, वो थोड़ा बहुत भी जाके 3-4 हजार करोड़ जिसके पास हो तो उसका दिमाग जो है वो तो फूल ही जाता है। भाजपा के लिए जैसा मैंने कहा पल अच्छी स्थिति है, उनको अब कुछ नहीं करना है, उनको अब वसुंधरा जी को साधने के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करना है, वो आराम से मोदी जी के नाम पर राजस्थान में चुनाव लड़के और बहुत आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकरण से अपनी पूरी तरह से हत्या कर ली, एक तरह से आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या करने के बाद में अब उनके पास कुछ भी करने को बचा नहीं। आप ये देखें, 200 सीटें हैं यहाँ पर, उन 200 सीटों में से 24 सीटें जो आती हैं हमारे उत्तर पूर्व जिलों की, जो है कि आपके सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर और धौलपुर, ये 24 सीटें जो थीं, इनमें से पिछली बार केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, केवल एक सीट, वो भी धौलपुर सिटी की, और वो भी एक डिफेक्टर की। और वो जो डिफेक्टर थी वो भी अब निकल चुकी है एक तरह से, क्योंकि उसने राज्यसभा के चुनाव में यहाँ पर वोट क्रॉस कर दिया था। शोभा रानी कुशवाहा पहले बीएसपी में थी, उनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको लाया गया और उन्होंने वोट क्रॉस कर दिया राज्यसभा के चुनाव में। तो ये भी स्पष्ट है कि उनको ना तो टिकट मिलने वाला है और वो स्वयं भी संभवतः रहेंगी नहीं, मुझे तो कांग्रेस में जाएंगे या वापस बीएसपी में जाएंगे। बीएसपी का ठीक ठाक जोर है यहाँ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, और वहां से हर बार वो तीन चार सीटें जीत के आती है। इस बार पूरी 6 सीटें जीत के आई थी, उसमें से 3-4 उसी क्षेत्र में इन्होंने जीती थी, और बाकी कांग्रेस ने जीती थी, 19-20 सीटें कांग्रेस ने जीती थी वहां पर। और जो पूरा इनके बीच में अंतर था वो इसी क्षेत्र का था, ये क्षेत्र गुर्जर मीणा बाहुल्य है। सचिन पायलट ने गुर्जर मीणा इक्वेशन यहाँ पर सेट कर दी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि गुर्जरों और मीणाओं ने एक साथ वोट दिए, वरना इनमें तो बहुत सारा विद्वेष था, जबकि विशेषकर जब ये गुर्जर आंदोलन चला उसके बाद तो गुर्जर और मीणा जो एक साथ वोट कर ही नहीं रहता किसी भी स्थिति में। ये एक बड़ी उपलब्धि थी सचिन पायलट की, और इस बड़ी उपलब्धि के कारण ही इनकी सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने में भी जो स्थिति आई अंत में, उसमें क्योंकि अशोक गहलोत ने अपने अधिक विश्वस्त लोगों को टिकट दिलवा लिए और सचिन पायलट के कई विश्वस्त लोगों को चुनाव हरवा दिया, और स्थिति इस प्रकार की बनी कि सीट जो थी वो बिल्कुल मार्जिन पे थी, 99 सीटें थी और इनके पास 11-12 निर्दलीय बैठे हुए थे। तो इसलिए मन मार के राहुल गांधी पूरी तरह से सचिन पायलट को बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी बना नहीं पाए क्योंकि स्थिति अशोक गहलोत ने इस प्रकार की बना दी। और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों उस समय अशोक गहलोत के फेवर में हो गई, लेकिन लगातार उसके बाद से रस्साकशी चली आ रही थी। सचिन पायलट राहुल गांधी के भरोसे थे, अशोक गहलोत अपने विधायकों के दम पे थे। अब वो लड़ाई यहाँ पर पहुंच गई है, जिसका अब अंत कांग्रेस की फूट में ही है, कांग्रेस की टूट में ही है। भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और कांग्रेस तोड़ो यात्रा यहाँ पर चल रही है राजस्थान में। तो ये जो पूरा जो परिदृश्य चल रहा है उसका ये मोटा मोटा एक विश्लेषण है। उस मोटे विश्लेषण के बाद में आपके जो कुछ प्रश्न आ गए उनको हम ले लेते हैं। साथ में आपको ये याद दिला देते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है जयपुर डायलॉग्स एनुअल इवेंट 2022, वो 5 और 6 नवंबर को होगा, और 5 और 6 नवंबर में रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुके हैं। आप अति शीघ्रता कर लें, नहीं तो फिर बाद में हम इनको 2-4 दिन में बंद करने वाले हैं। सब्सक्राइब हमें अवश्य करें, जो लोग भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ये भी मैं अनुरोध करूंगा कि शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट अवश्य करें फाइनेंशियली।